सुजीत कुमार की आवाज में अगला अध्याय विकट वास्तव की रिकॉर्डिंग होने जा रही है। सूर्योदय से पूर्व ही जन प्रवाह सागर के सभी पथों और वीथियों से बहकर नगर के उत्तर द्वार पर जनसागर का रूप धारण कर रहा था। अनेक नागरिकों ने संपूर्ण रात्रि या रात्रि का अधिकांश नगर द्वार पर ही बिता दिया था। स्त्री पुरुषों के हाथों में पुष्प मालाएं और झोलियां में पुष्प और धान की खीलें भरी थी। द्वार के तोरण पर मंगल वाद्य और सम्मुख नगाड़े बज रहे थे। नगर प्राचीर और उत्तर मार्ग पर खड़े वृक्ष भी उत्सुकता से व्याकुल नागरिकों से लद गए थे। अनेक लोग अपनी उत्सुकता का दमन न कर पाने के कारण मार्ग पर उत्तर की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। सेना के अग्रदूतों ने समाचार दिया था, मद्र की विजयी सेना घायल सेनापति पृथु सेन को लिए क्षण क्षण सागल की ओर बढ़ रही थी। गत रात्रि नगर से 2 योजन के अंतर पर शिविर डालकर सेना ने विश्राम किया था। सेनापति युद्ध में लगे घावों के कारण वेग से यात्रा करने में असमर्थ थे। पृथु सेन के आहत होने का समाचार नगर में पहुंचते ही वैद्यवर अस्थवीर चीवुक तथा नगर के अन्य सर्वश्रेष्ठ अनुभवी वैद्यों को अत्यंत वेगवान अश्वों से जुथे रथों पर पृथुसेन के उपचार के लिए भेज दिया गया था। सूर्य के प्रकाश की चकाचौंध ने से नेत्रों को बचाने के लिए हाथों की ओट किए उत्तर मार्ग पर सुदूर दृष्टि लगाए जनसमूह ने मार्ग पर धूलि का एक मेघ सा देखा। जन के विपुल जयघोष में वाद्यों का स्वर डूब गया। पृथुसेन पीड़ा और ज्वर से श्रांत मंद गति से चलती सेना से घिरी शिविका में शक्टों पर दार्व के पराजित प्रदेश से प्रांत स्वर्ण मणि माणिक्य रत्न तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थों का संचय और 2,000 दास दासियों को लिए नगर द्वार पर पहुंचा। उल्लसित सौभाग्यवती कुल नारियों ने अधिपात्र में जलते घृत के 100 दीपों से विजयी सेनापति की आरती उतारी। वृद्ध सेनापति गणपति मिथोद्रस की पौत्री कुमारी सीरो ने पृथु सेन का विजय अभिषेक कर यवन प्रथा के अनुसार उसे हरित किसले का मुकुट पहनाया। वृद्ध गणपति युवक सेनापति का सिर उनके क्षण तक अपनी श्वेत दाढ़ी में लिए गदगद मौन बने रहे। महावृद्ध महापंडित धर्मस्त्र देवशर्मा दासों का आश्रय लेकर अपनी शिविका से उतरे घायल सेनापति के सिर पर हाथ रखकर अब उन्होंने उन्मुक्त आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार महासामंत सर्वार्थ आचार्य प्रवर्धन और गण परिषद के दूसरे सदस्यों और विशिष्ट समाज ने भी विजयी युवक सेनापति की अभ्यर्थना की। निर्भय सागल नगरी विजय के उन्माद से उन्मुक्त हो उठी। राजपथों और विथियों में सभी और रात दिन उत्सव दिखाई देने लगा। राजपुरुष दरबार से प्राप्त बहुमूल्य पदार्थों और दास दासियों की सार्वजनिक बिक्री पर गणकोष को धन से पूर्ण कर रहे थे। जिन परिवारों के पुरुष संग्राम यज्ञ में हत आहत हुए गणपति ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी भेंट किए। जिन परिवारों के पुरुष संग्राम यज्ञ में हत आहत हुए गणपति ने उन्हें निर्वाह के लिए यथेष्ट धन और दास दासी भेंट किए। महाश्रेष्ठ प्रेस्थ ने कृपा के लिए एक विराट यज्ञ द्वारा देवताओं की तुष्टि की। आचार्य प्रवर्धन ने उस महायज्ञ के अधुर्वर्य का पद स्वीकार किया। 1,000 याज्ञिकों ने स्वस्ति वाचन द्वारा मंत्रोद्यापन किया। पुण्य धातु चैत्य में सृष्टि के तथागत के बिंब के सम्मुख 1,000 भिक्षुओं द्वारा सूत्र पाठ कराकर उनका भिक्षा सत्कार का परित्राण के लिए कृतज्ञता प्रकट की। इसी प्रकार देवी जीएस के मंदिर में भी उन्होंने बलि दी। महाश्रेष्ठ प्रेस्थ का प्रसाद आनंद कलरव से मुखरित हो उठा। अंतःपुर में केवल पृथुसेन के कक्ष में स्तब्धता थी। भीष्माचार्य वैद्य प्रवर अस्थवीर चिवुक पृथुसेन की चिकित्सा कर रहे थे। शल्य क्रिया निपुण चिवुक ने पृथुसेन के घावों को कौशे के तीरों से सीकर उन पर औषध का लेप किया। मुख से भी संजीवक औषधि देकर वैद्य ने आहत को पूर्ण विश्राम का आदेश दिया। पृथुसेन औषध के प्रभाव से निद्रा के पूर्ण विश्राम द्वारा स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। महासेनापति मिथोद्रस की पौत्री सिरोप्राय प्रतिक्षण विजयी सेनापति की परिचर्या में समीप बनी रहती। दिव्या ने छाया दूसरी दासियों धृति शर्मा और प्रसाद के बालकों के मुख में पृथुसेन के नगर प्रवेश के समारोह का विस्तार वृतांत सुना। स्वयं यह अस्वास्थ्य और अपनी अवस्था के प्रति संकोच अनुभव कर नगर द्वार पर न जा सकी थी। अपनी उस परिस्थिति से वह तड़प कर रह गई। पृथुसेन के सम्मान से उसने गर्व अनुभव किया। उसके घायल और रोगी होने के समाचार से उसका हृदय विकल था। अपनी संकोचजनक स्थिति से कुंठित हो वह सोचती, यदि आर्य के समर प्रस्थान से पूर्व ही उसका विवाह हो गया होता, वह किसी भी अवस्था में शिविकारूढ़ होकर नगर द्वार पहुंचती। गांवों से क्षत आर्य का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें प्रासाद में ले जाती। सेवा के लिए सिरों का पृथुसेन की रोग शैया के समीप रहना दिव्या को कटु विद्रूप मात्र जान पड़ता था। अपनी विवशता में शरीर को वस्त्रों में ढके सब यत्नों ने से अपना रहस्य सुरक्षित किए वह उस क्षण की कल्पना में आत्म विस्मित रहती जब पृथुसेन के स्वस्थ होने पर उनका विवाह विधि का रूप और समर्थन पा सकेगा। दिव्या प्रतिक्षण प्रेस्त प्रासाद से वृद्धा दासी वापा के समाचार लेकर आने की प्रतीक्षा करते करते व्यग्र हो उठी। संयम का बंधन असह्य हो गया। सूर्यास्त के पश्चात शरीर को वस्त्रों में ढक ओढ़ कर शिविका में बैठ छाया को साथ लेकर वह प्रेस्त प्रासाद में पहुंची। धड़कते हृदय को दोनों हाथों से संभाले आहट बचाकर दासी द्वारा दिखलाए मार्ग से दिव्या पृथुसेन के कक्ष के द्वार की ओर बढ़ी। दासी ने आदर से द्वार का पट हटाया। दिव्या ने देखा शया पर लेटे हुए पृथुसेन का शरीर अत्यंत कृश होकर पीला पड़ गया था। उसका सिर और कंधे चीरों में लिपटे थे। रोगी की शया के समीप अत्यंत गौर वर्ण पीठ पर फैले पिंगल केशों पर यवन प्रथा का मुक्तावली का किरीट बांधे सिरों एक दासी की सहायता से आधार पर रखे पात्र में रोगी के लिए औषधि का पेय बना रही थी। दिव्या को देखकर सिरों ने गृह स्वामिनी के अधिकार से रोगी की शया के उपधान की ओर देखा और रखा आसन ग्रहण करने का संकेत किया। उसके कान के समीप मुख पर कठिनता से सुने जा सकने योग्य स्वर में सिरों ने वैद्यराज स्थवीर चिबुक का आदेश सुनाया, किसी व्यवस्था में आर्य की निद्रा भंग न की जाए, अभ्यागत वार्तालाप द्वारा रोगी को क्लांत न करें। अपने आसन से दिव्या को पृथुसेन के चीरों से बंधे मस्तक और कंधे के अतिरिक्त शरीर को का कोई भाग दिखाई न दे रहा था। पृथुसेन निद्रागत तथा उसे सम्मुख और समीप पाकर भी उससे बात न कर पाने और उसका स्पर्श न कर पाने की बाधा और अपने और उसके बीच दूसरे व्यक्ति के व्यवधान से दिव्या अधीर हो उठी। पृथुसेन को अपने अंक में पा लेने के लिए उसके अंग स्फुरित हो उठे। बीते 6 मास का अंतर दूर होकर वियोग की रात्रि में पृथुसेन का स्पर्श दिव्या की अनुभूति में सजीव हो उठा। सिरों की उपस्थिति और उसका निषेध पृथुसेन को बलात् उसके अंग से छीने था। निरंतर पृथुसेन की ओर लगे दिव्या के नेत्र उसे पूर्ण रूप से पा लेने के लिए फैलते जा रहे थे। यथेष्ट विस्तार के लिए स्थान न पाकर हृदय का वाष्प नेत्रों के जल के रूप में परिणित हो गया। दिव्या की उस विवशता और क्षोभ में सिरों शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए उसके समीप आकर तात धर्मस्त्र और उसके परिवार का कुशल क्षेम पूछने लगी। उसने रोगी की कठिन परिस्थिति और अपने गुरुभार का विस्तृत वर्णन किया, कैसे दिन रात रोगी की परिचर्चा में उसे तत्पर रहना होता है। परिजन और समाज के अत्यंत अनुरोध करने पर भी क्षत रोगी की चिंता छोड़कर उत्सवों में सम्मिलित होना उसके लिए कठिन हो जाता है। सिरों का व्यवहार दिव्या को अपनी स्थिति और दुर्भाग्य के प्रति लांछन और उपहास के रूप में असह्य दंभ और अहंकार जान पड़ा। उत्तर में वह कुछ न कह सकी, केवल पलक झपक कर मौन रह गई। विस्मय की मुद्रा में नेत्र फैलाए चिंबुक पर तर्जनी रख सिरों ने प्रश्न किया, सखी तुम भी तो इन महत्वपूर्ण उत्सवों में सम्मिलित नहीं हो पाती, तुम्हारे बिना कला का प्रसंग तो निर्जीव रह जाता। देवी मल्लिका के नेत्र सदा तुम्हें ही खोजते रहते हैं, वे सदा ही तुम्हें स्मरण करती हैं। कौतूहलपूर्ण दृष्टि दिव्या के शरीर पर घूमू सिरों ने अपनी उत्तरीय अपने होठों पर रख लिया। उसके पुष्ट रक्त अधर का स्फुरण गोपन के इस प्रयत्न से और उग्र हो गया। पृथुसेन के निद्रा भंग की प्रतीक्षा में बैठे रहना दिव्या के लिए असंभव हो गया। जिस प्रकार भी संभव हो सका शिष्टाचार की रक्षा के लिए आहत वीर के स्वास्थ्य की मंगल कामना कर वह लौट गई। निद्रा भंग होने पर पृथुसेन को दासी द्वारा दिव्या के आकर लौट जाने का समाचार मिला। नगर द्वार पर जिस समय कुल नारियों द्वारा कुल कन्याओं ने उसका विजय तिलक लग किया था, उसके नेत्र निरंतर दिव्या का मुख और उसके कान दिव्या के स्वर को खोज रहे थे। पीड़ा उत्कट न होने की अवस्था में वह निरंतर उसी के विषय में सोचता रहा। दिव्या को इतने विलंब से आने और 2 शब्द बोल पाने की प्रतीक्षा न कर लौट जाना उसके लिए दारुण व्यथा बन गया। दिव्या के समीप स्वयं पहुंच पाने की अक्षमता उसे व्याकुल किए थी। दिव्या की उस उपेक्षा से खिन्न होकर वह निरंतर इसका कारण सोचता रहता। उत्सुकता से व्याकुल होकर पृथुसेन ने
सिरो से कुमारी दिव्या के आने और साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा किए बिना लौट जाने के संबंध में पूछा। सिरो के मुख पर विडम्बना की मुस्कान आ गई। अपना स्थूल रक्त अधर बिचकाकर वितृष्णा से उसने उत्तर दिया, कुमारी के मन की इच्छा के विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। आर्य धर्मस्त्र की प्रपौत्री के लिए रोगी की निद्रा पूर्ण होने के समय तक प्रतीक्षा सह न रही होगी और क्या जानूं। सिरों से उस विषय में पुनः कोई प्रश्न पूछने का साहस पृथुसेन को न हुआ। चिंता प्रकट न कर पाने पर पृथुसेन का मन चिंता से और भी अधिक क्षुब्ध हो गया। वह अनुमान न कर पाया 6 मास की उसकी अनुपस्थिति में क्या हो गया। क्या कुल अभिमान में कारण दिव्या उसके प्रति उदासीन हो गई अथवा अपने परिवार से त्रस्त होकर विरत हो गई। क्या उसकी अधिक प्रबल आकर्षण के सम्मुख वह झुक गई। अब उस मुझसे मिलने में उसे अनिच्छा क्यों होने लगी। अनेक पहर तक निश्चल पड़ा हुआ इसी प्रकार की दुष्कल्पनाओं में खोया रहता। स्वत्वीर चिवुक की चमत्कारिक औषधि और कांधारी फलों के रस से शरीर में शीघ्र ही रक्त वृद्धि होकर पृथुसेन की प्राण शक्ति सामर्थ्य अनुभव करने लगी। उसी अनुपात में दिव्या की स्मृति और उसके लिए व्याकुलता का वेग बढ़ने लगा। जीवन का पांसा फेंक कर प्राप्त की हुई सफलता दिव्या के अभाव में उसे निसार जान पड़ने लगी। महाश्रेष्ठ प्रेस्थ पुत्र के स्वास्थ्य में सुधार से प्रसन्न थे। पुत्र के चिंतित और शिथिल रहने के समाचार से उसकी अनमनस्यता दूर करने के लिए पृथुसेन के ही कक्ष में उन्होंने नृत्य संगीत और विनोद के दूसरे प्रबंध किए जाने का आदेश दिया। पृथुसेन को ही वे आयोजन केवल कोलाहल जान पड़ते। वह विरक्ति से ऐसे आयोजनों को हटा देने का संकेत कर मौन पड़ा रहता। श्रेष्ठी स्वयं भी पुत्र के पर्याय के समीप पीठिका पर उपदान का आश्रय लिए घड़ी आधी घड़ी बैठकर अनेक प्रसंगों से पुत्र का शैथिल्य दूर करने का यत्न करते। पृथुसेन उस वार्ता में भी रस न पाता। वह अपने मन की बात पिता के सम्मुख प्रकट करने का उपाय निरंतर सोचता रहता, परंतु साहस न कर पाता। वीणा हाथ में लिए स्निग्ध श्याम वर्ण नवीन दासी के कंधे का आश्रय लिए महाश्रेष्ठ कक्ष में आए। पृथुसेन के पर्यंक के समीप पीठिका पर आसन ग्रहण कर बोले, पुत्र अस्थवीर चिवुक की चमत्कारिक औषधि से तुम्हारे स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हो रहा है। वत्स, कहो तुम्हारे शैथिल्य का कारण क्या है। मन का अवसाद स्वास्थ्य के लिए घातक है। पुत्र, प्रसन्नता और स्फूर्ति पाने का यत्न करो। तुम्हें संगीत के मर्म में गति है। दक्षिणापद से आई यह दासी उल्का वीणा वादन में अद्भुत क्षमता रखती है। इसका वादन तुम्हारे मन की चिंता हरेगा। श्रेष्ठी ने दासी को वादन आरंभ करने का संकेत किया। दासी की अंगुली के स्पर्श से वीणा की तार से प्रथम झनकार होते ही पृथुसेन के मुख में विरक्ति का स्वाद भर गया। हाथ उठा दासी का मौन रहने का संकेत कर सिर झुकाए उसने पिता को संबोधन किया, तात मेरी इच्छा है शिविका रूढ़ होकर एक बार धर्मस्त्र के प्रासाद में हो आऊं, अनुमति दीजिए। स्वास्थ्य की इस क्षीणता और शैथिल्य में वत्स किस प्रयोजन से अपनी श्वेत पीली दाढ़ी हाथ में सूतते हुए सृष्टि ने विस्मय प्रकट किया। नेत्र झुकाए ही पृथुसेन ने उत्तर दिया, समर यात्रा पूर्व में महापंडित धर्मस्त्र की पौत्री से विवाह का आवेदन कर चुका हूँ, उस कार्य को अविलंब पूर्ण करना चाहता हूँ। वृद्ध श्रेष्ठी अपनी दाढ़ी को शन शन हाथ में सूतते रहे। ईषत मुस्कान से वे बोले, पुत्र, देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें विद्या बुद्धि कौशल धन और रण में विजय का सम्मान दिया है। समय पर वे देवता तुम्हें स्त्री सुख में भी कृपणता न करेंगे। एक दिव्या क्या उनके लाव्यणमयी कलामयी ललनाएं तुम्हारे भोग के लिए प्रस्तुत रहेंगी। जो बुद्धिमान अवसर के अनुकूल व्यवहार करता है उसके लिए देवता इस लोक और परलोक के सभी सुखों का वरदान देते हैं। पुत्र, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करो। पिता के सम्मुख संकोच से मौन रहकर पृथुसेन मन ही मन अधिक व्याकुल हो उठा। उसकी कल्पना में दिव्या अनेक अत्यंत कमनीय रूपों में आ उपस्थित होती, नृत्य के समय अनेक मुद्राओं में वलयत उसके बाहु क्षीण कोटि के ऊपर विस्तृत होता, अस्पष्ट गोलाइया में बटा वक्ष स्थल, चिकने शाटक से झलकती उसकी मांसल लंबी पुष्ट लौकी के समान जंघाए, उसका कोमल अंडाकृत मुख, पतले रक्त ओष्ट सुडोल नासा, फैले हुए नेत्र जिनमें विश्वास की गहराई थी। प्रथम परिचय के अवसर पर दिव्या का सहज सौजन्य, उसकी अधीरता में दिव्या के नेत्र सजल हो जाना, हृदय पर सिर रखकर उसका आश्वासन देना, उसके अंगों का स्फूर्तिदायक स्पर्श, समर यात्रा की रात्रि में उसका अनुरागमय आत्मसमर्पण। पृथुसेन का रक्त स्त्राव से निर्बल शरीर कंटकित हो जाता। उसकी भावना दिव्या को पाने के लिए अदम्य वेग से उमग उठती और फिर असमर्थ और असफलता की बाधा पाकर तट से टकराकर पलटती लहरों की भांति वह भावना कुछ दूसरी दिशा में भी जाती। क्यों वो मेरे प्रति इस प्रकार विरक्त हो गई? उस प्रकट कोमलता और कमनीयता में इतनी निष्ठुरता छिपी थी जैसे कठोर शिला पर ठहरे तिथले जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा के सौंदर्य का कुछ सार नहीं। सीरो उसके प्रति अनुराग प्रकट करती थी, परंतु पृथुसेन उपेक्षा करता था। अब वह सीरो के प्रति अपनी उपेक्षा में संकुचित होने लगता, फिर सोचता नहीं, वह दिव्या को पाएगा ही। दृष्टि छत की ओर लगाए दिव्या से एकांत मिलन के क्षणों में अपनी अधीरता और उसका निग्रह, उसकी विफलता के सम्मुख दिव्या का आत्मसमर्पण, इस घटनाक्रम पर विचार कर उसे विस्मय होता। क्या दिव्या इतनी अस्थिर हो सकती है? पृथुसेन ने पिता के मुख से गणपति की पौत्री सीरो की प्रशंसा सुनकर उनका अभिप्राय जानकर विविशता के स्वर में कहा, तात, धर्मस्त्र की पौत्री से प्रतिज्ञा बुद्ध होने और उसकी प्रति अत्यंत अनुराग के कारण मेरे लिए किसी दूसरी कन्या से विवाह का प्रसंग मन में लाना असंभव नहीं। वृद्ध सृष्टि का हाथ अभ्यास के अनुसार अपनी दाढ़ी शन शन सूतते हुए थम गया। माथे पर भ्रकुटी को रेखा गहरी हो गई, परंतु मुख पर मुस्कुराहट दिखाई दी। सृष्टि की यह मुस्कान दृढ़ निश्चय का संकेत थी। ताड़पत्र का विशाल व्यजन डुलाकर वातास करते दास विचिवर के सृष्टि ने आदेश दिया, अपने स्थान पर दास वाक को सेवा में भेजो। दास वाक बहरा और गूंगा था। उसका कार्य विशेषतः गुप्त मंत्रणा के समय में सेवा में उपस्थित रहना था। इस आयोजन से पृथुसेन समझ गया कि पिता प्रसंग पर गंभीरता से वार्तालाप करेंगे। वह भी अपने निश्चय पर दृढ़ था। श्रेष्ठी मुख और नेत्रों में मुस्कान लिए बोले, वत्स, यौवन के आरंभ में नारी के प्रति आवेग प्रबल होता है। पुत्र, आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। जीवन जल का पात्र है, आवेग उसमें एक बुदबुदा मात्र है। जीवन की सफलता लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है, जैसे रोग में पथ्य अरुचिकर होने पर भी उपयोगिता के विचार से ग्रहण किया जाता है। कामना की तृप्ति के लिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुकूल अनेक कमनीय स्त्रियों से अनुराग कर सकते हो। विवाह को जीवन में सामर्थ्य और सफलता का साधन बनाओ। सामर्थ्य से ही मनुष्य भोग और कामना करने का अधिकारी होता है। सृष्टि ने पुत्र को उत्तर देने के लिए क्षण भर अवसर दिया, परंतु उसे सिर झुकाए मौन देख वे फिर बोले, पुत्र, स्त्री जीवन की पूर्ति नहीं, जीवन की पूर्ति का एक उपकरण और साधन मात्र है। सामर्थ्यवान सफल मनुष्य अनेक स्त्रियां प्राप्त कर सकता है, परंतु सफलता के अवसर जीवन में अनेक नहीं आते। पुत्र, संसार में बल ही प्रधान है, धन बल और जन बल। तुम मद्र गण के राजा गणपति की कृपा की उपेक्षा कर वृद्ध देव शर्मा की कृपा पर निर्भर रहना चाहते हो। पुत्र, तुम नीतिवान हो, विचार करो, यवन गणपति की पौत्री से विवाह कर तुम अनायास बिना किसी विरोध के महाकुलीन सामंत बन जाओगे, परंतु देव शर्मा की प्रपौत्री से विवाह की इच्छा करने पर, उदार देव शर्मा की आपत्ति न करने पर भी संपूर्ण द्विज समाज को अपना शत्रु बना लोगे। द्विजवर्ग की सत्ता इतर जन की हीनता और इतर जन से सेवा प्राप्त करने के अधिकार पर आश्रित है। इतर जन को अपने समान बना लेने पर उनका विशेष अधिकार क्या रह जाएगा? इतर जन का सशक्त होना उन्हें स्वीकार नहीं, परंतु समर्थ की सत्ता वे भी अस्वीकार नहीं कर सकते। हम किसी को शत्रु क्यों बनाएं? पुत्र, हमें शत्रुओं की नहीं, मित्रों और सहायकों की आवश्यकता है। अनुमोदन की आशा में श्रेष्ठ क्षण भर पुत्र की ओर देखते रहे। उसे पुनः मुख विरोध में सिर झुकाए देखकर उनका स्वर आर्द्र हो गया। पुत्र, एक दास की स्थिति से उठकर मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं कि मेरा पुत्र सेनापति बनकर महासेनापति बनने की आशा कर सकता है। पुत्र, सामर्थ्य और अधिकार की चरम सीमा यही नहीं है। द्रव्य और वैभव का उपयोग केवल क्षुद्र भोग में नहीं, उसे प्राप्त शक्ति में है। पुत्र, प्रधान सुख शक्ति का भोग है। पुत्र, अवसर है कि तुम मद्र के गणपति का विश्वास प्राप्त कर सामंत पद का अधिकार पाकर अपने द्रव्य से मद्र की रक्षा के लिए एक सेना रख सकते हो। वह सेना तुम्हारी शक्ति होगी, तुम मद्र गणराज्य का रूप बदल सकोगे। मैं तुम्हें परम भट्टारक मद्र के गणपति के आसन पर देखना चाहता हूँ, मद्र के छत्रपति राजा के आसन पर देखना चाहता हूँ। यदि मगध में सूर्य मौर्य वंश का राज्य स्थापित हो सकता था, तो मद्र में प्रेस्त वंश का राज्य क्यों नहीं स्थापित हो सकता? प्रेस्त पुत्र की वह दृष्टि लगाए मौन बैठे रहे। पृथुसेन हथेली पर थोड़ी टिकाए अवाक रहा। पिता ने उसे कल्पना और महत्वाकांक्षा के अनुकूल सागर की तरंगों में धकेल कर छोड़ दिया। इस विस्तार में पृथुसेन का मस्तिष्क चकरा रहा था। उसकी निजी अनुभूति के विपरीत उस प्रवाह की गति अति प्रबल थी। वह किसी प्रकार सिर उठाकर श्वास ले पाने का यत्न कर रहा था। सृष्टि ने सिर झुकाए उपाधान के सारे सहारे करवट ली। पृथुसेन ने समझा पिता उठने का विचार कर रहे हैं। अपना मौन स्वीकृति का संकेत समझे जाने की आशंका से उसने सिर झुकाए ही साहस किया, परंतु दांत में दिव्या से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, मैं उसे पत्नी रूप में ग्रहण कर चुका हूँ, यह विश्वासघात होगा। वृद्ध की भ्रकुटी अधिक गहरी होकर उनके नेत्रों पर झुकी आई और मुख पर और नेत्रों में विद्रूप की मुस्कुराहट गहरी हो गई। पुत्र, यह विश्वासघात नहीं। कालांतर में तुम चाहो तो धर्मस्त्र देव शर्मा की प्रपौत्री से भी विवाह कर सकते हो। समर्थ पुरुष को अनेक स्त्रियों और विवाहों की आवश्यकता होती है, परंतु इस समय नहीं। तुमने उसे छलने के विचार से प्रतिज्ञा नहीं की। जिस परिस्थिति में तुमने यह विचार और प्रतिज्ञा की थी वह अब नहीं है। प्रतिज्ञा की परिस्थिति बदल जाने से प्रतिज्ञा का आधार नहीं रहता। उस समय देव शर्मा की कन्या से विवाह की ही उचित लक्ष्य था। अब उससे अधिक श्रेय मार्ग सम्मुख है। भविष्य में तुम्हारी सफलता गणपति की कन्या से विवाह करने में ही है। सिर झुकाए पृथुसेन के मौन अस्वीकृति का भाव जानकर महाश्रेष्ठी पुनः आर्द्र स्वर में बोले, पुत्र, तुम मेरे संपूर्ण जीवन के प्रयत्नों को अपने वंश के भविष्य के एक युवती के मोह में नष्ट कर देना चाहते हो। महापंडित चाणक्य ने कहा है, आत्मनत स्वतंत्रम रक्षेत दारैरपि धनरैपि पुत्र स्त्री भोग्य है। मति सर्भम होने पर मुंह में पुरुष स्त्री के लिए बलिदान होने लगता है। वत्स, ऐसी ही परिस्थिति में नित्य महत्वाकांक्षी और परलोक कामी पुरुष के लिए नारी को पतन का द्वार कहते हैं।
अब आप निशान सिंह की आवाज सुनेंगे। पृथुसेन उसी प्रकार निश्चल मौन बैठा रहा। क्षण भर चिंतामग्न रहकर वृद्ध ने पुनः पुत्र को संबोधन किया, पुत्र, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे सम्मान अपने भविष्य की रक्षा करोगे। गत पूर्णिमा के अवसर पर शामंत कार्तवीर के प्रसाद में मल्लिका के नृत्य के समय धर्मस्थ देव शर्मा ने तुम्हारे स्वास्थ्य के विषय में कुशल क्षेम पूछकर तुम्हारे और दिव्या के अनुराग का उल्लेख किया था। उस समय मैंने धर्मस्थ को उत्तर दिया था, मैं अपने कुल और वंश के विचार से अपने पुत्र के लिए द्विज परिवार की कन्या की कामना करके मैं सदा मद्र के द्विज वर्ग के कोप का भाजन बनने का साहस न करूंगा। इस समय गणपति की पौत्री सीरो और पृथुसेन में विशेष अनुराग है। उस समय उस संबंध में वर्ण विचारक बाधक नहीं। मैं गणपति के सम्मुख पृथुसेन के लिए अपनी पौत्री के पाणी का प्रार्थी हूँ। पृथुसेन की ग्रीवा और अधिक झुक गई। पिता की ओर न देखकर वह सिर उपधान पर रख करवट से लेट गया। पृथुसेन का शरीर शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ हो गया, परंतु मन उसका अत्यंत खिन्न रहता। वह कभी बाहर चतुशाल में और कभी अंतःपुर के प्रासाद में अनमनस्क सा बैठा रहता। सियो के आने पर वह विशेष उत्साह प्रकट न कर पाता। सीरो वीर पृथुसेन की गंभीरता पर मुग्ध थी। सीरो के विशेष आग्रह से केवल एक बार वह मल्लिका प्रसाद में और एक बार गणपति के प्रसाद में उसके साथ शिविका पर गया। उसके मन में निरंतर एक समस्या थी, सीरो से विवाह करके भी वह दिव्या को पा सके। गंभीर विचार और दृढ़ निश्चय से मन को विवश कर पृथुसेन सीरो के प्रति अनुराग और उत्साह दिखाने लगा। एक दिन उसने भावावेश की अवस्था में सीरो को अंक में लेकर उसे दिव्या को सपत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। सीरो नागिन की भांति फुफकार कर दूर जा खड़ी हुई। उसने स्थूल रक्त ओष्ठ फड़फड़ा उठे और नेत्रों से क्रोध के उष्ण अश्रु बह आए। इसके पश्चात सीरो ने पृथुसेन के कंधे के आशय बैठकर आंसुओं से नेत्रों का काजल बहाते हुए जम्बूद्वीप के आर्यों की कुसतित पत्नी प्रथा के प्रति घृणा प्रकट की। आर्यों में स्त्री केवल योग्य भोग की संपत्ति और दासी है। वह तो अपने प्रियतम को किसी के साथ बांट नहीं सकती। वह तो अपने प्रियतम के हृदय की एक छत्र रानी और अंतःपुर की एकमात्र स्वामिनी बनेगी। पिता के तर्क को उचित मानने के कारण सोच सोच कर पृथुसेन के लिए स्त्री नीरस विषय और जीवन पथ की अरोचक बाधा मात्र बन गई। वह अपने असाधारण बुद्धि और दूरदर्शी पिता के निर्देश से मन को जीवन के संघर्ष के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने आप को सीरो की प्रणय कीड़ा का कंदुक अनुभव कर उसे स्त्रियों के प्रति अनुराग की कल्पना केवल विडंबना मात्र जान पड़ने लगी। वह अपनी तुलना संपन्न और अभिजात वंशी परिवारों में कामुकता की साधन विवश सुंदर युवती दासियों से करने लगता। दिव्या पृथुसेन को भली भांति देखे बिना उससे एक भी शब्द बोलने का अवसर न पाकर विवश लौटकर हताश हो गई। आशंका से वह सोचती, दो अढ़ाई मास से पूर्व आर्य शैया से उठ न सकेंगे, मेरा क्या होगा। पृथुसेन के विजयी होकर लौट आने से धर्मस्थ के अंतःपुर में दिव्या का विवाह की बात एक अप्रिय अनिवार्य प्रसंग के रूप में उठने लगी थी। ऐसे समाचार छाया द्वारा दिव्या तक पहुंच जाते। विष्णु शर्मा और पितृत्व प्रबुद्ध शर्मा के कक्ष में पृथुसेन की कुलीनता के संबंध में विवाद, महापितृत्व भृगु शर्मा की उदासीनता, तटस्थता, इस प्रसंग से महादेवी की विरक्ति तात की अनुमति के कारण उसका उसे सह लेना, ऐसे विरोध और अपमान को दिव्या वरदान के रूप में अंगीकार करने के लिए विफल थी। परंतु पृथुसेन के रोग शैया पर पड़े रहते क्या हो सकता था। विवाह की विधि से पृथुसेन को पाए बिना अपने शरीर में उपस्थित पृथुसेन के अंश की रक्षा वह विरोधी दृष्टियों से किस प्रकार करे। उसके जीवन की संपूर्ण महत्वाकांक्षा और माधुर्य कलंक और अपराध बन जा रहा था। विकल और विफल पृथुसेन को आश्रय देकर और उसे पाकर उसने गर्व और संतोष अनुभव किया था। उसकी वह आत्मगरिमा ही अब उसके पांव उसकी वह आत्मगरिमा ही अब उसके पांव के नीचे अधकूप बनकर उसे निगल जाना चाहती थी। कौन चमत्कार इस समय उसकी रक्षा कर सकेगा। पृथुसेन की संतान धारण करने के लिए ही पृथुसेन से उसका विवाह होगा, फिर वही विषय अब इतना प्राणांत क्यों बन गया है। दिव्या निरंतर शिथिल होकर कक्ष में प्रयत्न पर लेटी रहती। महादेवी दिव्या निरंतर शिथिल होकर कक्ष में प्रयंक पर लेटी रहती। महादेवी उसके स्वास्थ्य के विषय में चिंतित होने लगी। धाता को उन्होंने दिव्या की विशेष परिचर्या में नियत कर दिया और उससे प्रायः उस विषय में जिज्ञासा करती रहती। धाता और छाया अंशकामय परिस्थिति से गुरुता ज्ञान कर भी दिव्या के प्रति अनुराग के कारण महादेवी के सम्मुख तथा अन्य कक्षों में कुमारी के केवल साधारण अस्वास्थ्य की ही बात कहती। छाया अपने प्रेमी बाहुल को दार्व के युद्ध में खोकर विरह व्यथित और वंचित स्वामिनी के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो उठी थी। वह पूर्ण रूप से दिव्या की छाया ही बन गई। वह स्वामिनी के प्रयत्न से दूर न होती। रात्रि अधिक बीत जाने पर भी वह निश्चय न कर पाती कि दिव्या निद्राग्रस्त है अथवा चिंताग्रस्त हो मौन पड़ी है। वह पल पल स्वामिनी की ओर देखती, पर्यंक के स्थून का सहारा लिए सो जाती। दासी आस्था महादेवी के आदेश से नित्य कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नैवेद्य लेकर प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य चली जाती थी। उससे पाए अनेक समाचार छाया दिव्या को सुनाती। आशसा ने कहा था, जैसा धर्मस्थ के प्रसाद से कुमारी के स्वास्थ्य संकल्प का नैवेद्य प्रजापति के देवस्थान और धातु चैत्य में जाता है, उसी प्रकार आर्य पृथुसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए प्रेस्त प्रसाद से भी नैवेद्य जाता है और सुना है कि गणपति के प्रसाद से भी। उत्साह से छाया ने समाचार दिया, आर्य अब स्वस्थ हैं। दिव्या छाया के उत्साह का अंश न पा सकी। गणपति के प्रसाद से पृथुसेन के स्वास्थ्य संकल्प के लिए नैवेद्य जाने के समाचार से वह दूसरी ही कल्पना में व्यस्त हो गई। उसे पृथुसेन के प्रयंग के समीप सिरो की गृह स्वामिनी के अधिकार से धृष्टापूर्ण व्यवहार नेत्रों के सम्मुख दिखाई देने लगा। दिव्या ने छाया से आशा द्वारा पाए गणपति की पौत्री और पृथुसेन के एक सीविका पर आरूढ़ होकर मल्लिका प्रसाद पुष्पकर्णी और गणपति के प्रसाद में जाने के वृतांत भी सुने। उसका मन चिंता के गहरे कूप में उतर गया। वह सोचती, आर्य को क्या हो गया। वह अति कोमल और दुर्धिष्ट, वह युद्ध का विजेता, वह आत्मसम्मान के लिए प्राणों पर खेल जाने के लिए तत्पर, जो मेरे बिना जीवन निरर्थक समझ रहा था, मुझे पा लेने के आश्वासन से जो आत्मग्लान मुख समर में मृत्यु का आलिंगन करने चला गया था, उसे क्या हो गया। क्या आर्य मुझे भूल ही गए। क्या वह प्रणय और विकलता सब छल और प्रावंचना थी? उसके लिए अब शरण कहाँ है? यदि पृथ्वी फटकर उसे अपने गर्भ में आश्रय दे देती, वह त्राण पाने के लिए उत्पन्न ही नहीं हुई। इसलिए तो उसे जन्म देने वाली माँ भी उसे पृथ्वी पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गई। संसार भर में जिसे अपने उसने अपना समझा, वही प्रवंचना कर रहा है। और आर्य रुद्रधीर वह स्वयं अपने ही तात से निर्वासन का दंड पाकर दूर चला गया। मध्याह्न में नेत्र मूंदे विष्ठर पर लेटी दिव्या को निद्रागत जानकर छाया कुछ समय के लिए महादेव के कक्ष में अपनी माता की ओर चली गई। दुर्भाग्य का समाचार सुन वह तुरंत ही दिव्या के कक्ष की ओर लौटी। दिव्या अब भी भित्ति की ओर मुख किए निश्चल लेटी थी। प्रतीक्षा छाया के लिए असह्य हो रही थी। भयंकर दुर्घटना से वह कुमारी को कैसे अनजान रहने दे। मन की दुविधा को वश करने के लिए कक्ष की सामग्री यथास्थान रखने के प्रयत्न में छाया के पांव को ठोकर से धातु का द्वीप स्तंभ गिरकर कक्ष झंकार से गूंज उठा। आहट से दिव्या ने करवट लेकर उस ओर देखा। स्वामिनी की निद्रा में व्याघात के लिए विनित स्वर में क्षमा मांगकर विष्ठर के समीप आकर छाया ने भग्र स्वर में संवाद कहा, आर्य पृथुसेन से गणपति की पौत्री के वगदान के उत्सव का निमंत्रण प्रसाद में आने से तात और महादेवी अपने अपने कक्ष में अत्यंत चिंतित हैं। आर्य दृष्टि शर्मा और विनय शर्मा में इस प्रसंग को लेकर कटु विवाद हो गया है। दिव्या विष्ठर पर निश्चल पड़ी छत की ओर दृष्टि लगाए रही। डेढ़ घड़ी तक वह उसी प्रकार पड़ी रही। छाया हृदय से उछल आए क्रंदन को कंठ में दबाए स्वामिनी की दृष्टि बचाकर आंसू पोंछ लेती और फिर स्वामिनी की ओर देखने लगती। छाया एक पहर रात बीत जाने पर दिव्या को सहारा देकर उसके पर्यंक पर ले गई। हेमंत के भीषण शीत में भी दिव्या को वस्त्रों की सुध न थी। छाया ने दुकूल और अर्ध से शरीर को भली भांति ढक दिया और पर्यंक की पाटी पर चिबुक रहकर समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या के नेत्र सूखे थे, परंतु छाया के नेत्र निरंतर आंसू बहाने और पोंछे जाने के कारण सूझकर लाल हो गए थे। उसकी ओर देखकर उपधान से सिर उठाए बिना ही दिव्या ने पुकारा, छाया। बहुत समय पश्चात स्वामिनी के मुख से संबोधन सुनकर छाया की ग्रीवा उत्साह से उठ गई। एक बार मैं आर्य से साक्षात्कार करूंगी, क्षीण स्वर में परंतु निश्चय से दिव्या ने कहा। भद्रे गणपति की पौत्री ने निश्चय ही तांत्रिक द्वारा आर्य पर वशीकरण किया है। छाया स्वामिनी के समीप होकर नेत्रों में प्रतिहिंसा भरे रहस्य के स्वर में बोली, भद्रे का आदेश हो तो तांत्रिक बैकुंठ पंडित से गणपति की पौत्री के वशीकरण का उच्चाटन मंत्र और भद्रे के लिए वशीकरण कवच प्राप्त करूं? हाँ छाया, जो भी संभव हो, निराशा से क्षीण स्वर में दिव्या ने कहा। दैव जाने आर्य को क्या हो गया है। आर्य के लिए सिरो यदि उतनी ही काम में हो गई है तो वे मेरी अवज्ञा क्यों कर रहे हैं। मैं सिरो के साथ सख्य भाव से सपत्नित्व स्वीकार करूंगी। सभी कुलीन आर्यों के परिवार में अनेक पत्नियां हैं, क्या सिरो भी मेरे साथ आर्य की पत्नी नहीं बन सकती? एक वृक्ष की छाया में अनेक प्राणी विश्राम पाते हैं, गजराज की अनेक पत्नियां होती हैं, उसी प्रकार आर्य की भुजा के आश्रय में हम दोनों ही रहेंगी। दिव्या मौन हो गई। दिव्या शरीर पर उठाए दुकूल और अर्घ्य से उष्णता अनुभव करने लगी। उसके वस्त्रों को सहसा शरीर से परे हटा दिया। तुरंत वस्त्र पुनः उसके शरीर पर खींचकर छाया ने अनुनय की, भद्रे अत्यंत शीतल हिमवात गवाक्ष से आ रहा है, शरीर कष्ट पाएगा। छाया दिव्या के उष्णता से तपते पांव उघार कर उसका शेष शरीर वस्त्रों से ढक के रही। दिव्या ने उष्णता के क्षोभ से सिर के केसों को उपधान पर फैला पुनः छाया को पुकारा, आर्य के प्रसाद में बीसियां दासी अनेक सेवा कार्यों के लिए हैं, क्या मेरे लिए वहां स्थान नहीं है? उत्तर देना छाया के लिए संभव न रहा। मुख और नेत्रों पर उत्तरीय दबा कर वह पर्यंक के स्थूल के आश्रम में सिर घुटनों पर टिका कर बैठ गई। क्रंदन के उच्छ्वास से उसका हृदय बाहर आ जाना चाहता था। बहुत समय तक किसी प्रकार आपको अपने वश कर उसने पुनः स्वामिनी की ओर देखा। दिव्या मौन पड़ी थी। अपने आंसुओं और सिसकियों से स्वामिनी को क्षुब्ध करने की आशंका के कारण वह अपने मुख के समीप जाकर देख न पाई कि दिव्या निद्राग्रस्त है या जग रही है। रात्रि के तीसरे पहर तक इस दुविधा में कभी उठते कभी बैठते उसे नींद का झोंका आ गया। अत्यंत शीत के कारण शरीर को घुटनों और कहनियों में समेट कर वह स्वामिनी के पर्यंग के नीचे उसके स्नेह रज्जू से बंधे कुत्ते की भांति पड़ी रही। निद्रा भंग होने पर छाया ने देखा घाम फैल हो चुका था। विलंब तक सोने की लज्जा से वह वस्त्रों को संभाल कर उठ खड़ी हुई। हेमंत के तुहीन आवर्त सूर्य की सुखद रंगीन किरणों गवाच से आकर दिव्या के पीत मुख पर पड़ रही थी। वह गाढ़ निद्रा में थी। उसका श्वास समगति से चल रहा था। स्वामिनी की निद्रा भंग होने की आशंका से आहट न कर छाया कक्ष से निकली। स्वामिनी की गत रात्रि की वेदना का वृतांत माँ धात्री से कहने वह अंतःपुर के उद्यान के उस पार आर्यधित्री शर्मा के कक्ष की ओर गई। आर्यधित्री शर्मा की युवा पत्नी मोक्षा के प्रथम प्रसव की असुविधा के कारण अनुभव धात्री निरंतर उन्हीं की परिचर्या में थी। प्रभात के प्रथम किरणों में उद्यान की हरी घास और लता कुंजों पर ओस के बूंदें छलक रही थी। उदास छाया को जान पड़ा। रात भर संपूर्ण प्रकृति भी उसकी स्वामिनी और उसकी भांति आंसू बहाकर अपनी अभी शांत हुई हैं। आर्य मोक्षा की चिंताजनक अवस्था के कारण महादेवी और आर्य विष्णु शर्मा, भृगु शर्मा, विनय शर्मा, प्रबुद्ध शर्मा और आदि कक्ष से आए अमिता, तारा, उमा आदि देवियां घृति शर्मा के कक्ष में एकत्र थीं। बाहर घृति शर्मा चिंता की मुद्रा में विनय शर्मा से परामर्श कर रहे थे। भीतर पर्यंक पर पीड़ा से कराहते आर्य मोक्षा को धात्री अपनी बाहों में संभाले थी। महादेवी दुकूल में शरीर लपेट समीप ही पीठिका पर बैठी थी। कुल बंधुए मोक्ष की पीड़ा से निरप्रेत प्रसूत के अवसर से उत्साह परस्पर वार्तालाप में मग्न थी। छाया ने सुना, आर्य अमिता सुविधा से सुने जाने योग्य रहस्य के स्वर में कह रही थी, कुमारी दिव्या के अस्वस्थ का क्या कहना, कभी सभी लक्षण तो गर्व के हैं। छाया महादेवी को प्रणाम करने के लिए उनके सम्मुख भूमि पर सिर टिकाए थी। आर्य अमिता के शब्द उसके कानों में गए जैसे मस्तिष्क पर वज्रपात हो गया। नेत्र ऊपर उठाकर उसने देखा, महादेवी प्रणाम स्वीकार करने की सुध भूल वाघ्रत्य से निस्तेज नेत्र आर्य अमिता की ओर उठाकर ओठ खोल रही थी। छाया श्वास रोके द्रुत गति से दिव्या की कक्ष की ओर लौटी। स्वामिनी अभी भी उसी प्रकार गाढ़ निद्रा में शांत और निश्चल थी। नियमित श्वास से उनके सुगोल वक्ष नियमित अंतर ऊपर नीचे हो रहे थे। नियमित और दीर्घ निश्वास अनियमित अंतर से सुनाई दे रहे थे। छाया ने उत्तेजना में पर्यंक का चक्कर लगाया और दिव्य की मुख की ओर देखती खड़ी रह गई। स्वामिनी की निद्रा किस प्रकार भंग करें, भयंकर आपत्ति से अज्ञान कैसे रहने दें। छाया कुछ क्षण कच्छ के बाहर जाकर खड़ी रही। लौट कर निद्राग्रत स्वामिनी की ओर देखा और दोनों हाथों से अपना सिर थामकर पर्यंक का आश्रय लेकर बैठ गई। फिर स्वामिनी की मुख की ओर देखा, उठकर फिर कुछ क्षण के लिए बाहर गई। लौट कर फिर देखा, स्वामिनी के लिए जल प्रक्षालन पात्र और पौछन वस्त्र पर्यंक के समीप रखा है। स्वामिनी अब भी गूढ़ निद्रा में अचेत विश्राम पा रही थी। छाया के शरीर का रोम रोम दुश्चिंता से कांप रहा था। दिव्या ने नेत्र खोले। आपत्ति का प्रसंग छाया के मुख पर आकर रह गया। क्या कहे, किस प्रकार कहे। दुविधा में उसने मुख धोने के लिए जल से पूर्व पौछन वस्त्र आके बढ़ा दिया। कुछ कहने में असमर्थ छाया के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे। दिव्या के कारण पूछने पर छाया अत्यंत अवश हो गई। जल का पात्र हाथ से छूट जाने की आशंका से उसे भूमि पर रख कर आंसू भरा मुख उत्तरीय में लपेट वह पर्यंक की पाटी पर सिर रख कर बैठ गई। दिव्या के अनेक बार प्रश्न करने पर छाया ने उत्तरीय में लिपटा सिर पर्यंक पर टिकाए ही उच्च वासों से भग्र स्वर में कठिनता से कहा, आर्य मोक्षा के कक्ष में सब देवियां और महादेवी के सम्मुख आर्य अमिता ने सबको सुनाकर कहा, कुमारी दिव्या का स्वास्थ्य क्या, सभी लक्षण गर्भ के हैं। दिव्या के नेत्र काष्ठ की प्रतिमा की भांति अपलक खुले रह गए। मुख सहसा बहुत पीला और भाव रहित हो गया। पर्यंक पर गिरने की आहट सुनकर छाया ने सिर उठाकर देखा, दिव्या एक ओर लुढ़क गई। उसने व्यग्रता से स्वामिनी को संभालने का यत्न किया। देखा वह मूर्छित थी। छाया की व्यग्रता ने उसके नेत्रों का जल प्रवाह रोक दिया। वह दिव्या के मुख पर शीतल जल के छींटे देकर वस्त्र से वतास कर उसके पांव के तलवे सहलाकर उसे सचेत करने का यत्न कर रही थी। लगभग आधी घड़ी के पश्चात दिव्या ने नेत्र खोले। अपने शुष्क ओठों को जीवा से रिक्त कर उसने जल मांगा। छाया ने अत्यंत संयम से अपने आंसू वश में किए। वह अनेक बातों की ओर दिव्या का ध्यान आकृष्ट कर उसे पुनः मूर्छा से बचाने के लिए सतर्क रही। दिव्या छाया की किसी बात का उत्तर न देकर शून्य निष्पलक दृष्टि कभी कक्ष की छत की ओर, कभी भित्तियों की ओर और कभी द्वार के बाहर उद्यान की ओर लगाए थी। मध्याह्न से पूर्वी दासी आशा कुमारी के लिए पथ्य लेकर उपस्थित हुई। अत्यंत अनुनय से छाया ने पथ्य का कुछ भाग लेने के लिए दिव्या को विवश किया। आशा के लौटते समय छाया ने उसे धाता को तुरंत आने के लिए कुमारी का आदेश दिया। चौथे पहर सहसा पिप्पणी शहनाई और मृदंग के स्वर से संपूर्ण प्रासाद गूंज उठा। मुस्कुराने का यत्न कर छाया ने कहा, आर्य मोक्षा के संतान प्रसव की है। उत्तर में दिव्या ने केवल दीर्घ निश्वास लिया। मन ही मन वह सोचने लगी, आर्य मोक्षा का गर्भ परिवार के लिए उल्लास का कारण है और मेरा गर्भ कलंक का, क्योंकि मेरे गर्भ का पिता नहीं है। मैं अपने गर्व को उसके पिता के पास ले जाऊंगी। क्या प्रेस्त प्रसाद में पृथुसेन से मेरा गर्व इसी प्रकार विपत्ति और कलंक का कारण होता? मेरा स्थान वही है। छाया को संबोधन कर उसने कहा, अम्मा को बुलाओ, मैं प्रेस्त प्रसाद जाऊंगी। धर्मस्थ का प्रसाद नव संतान प्रसव के उत्साह और उल्लास में व्यस्त और व्यग्र था। धर्मस्थ और महादेवी मर्मान तक धर्म दुश्चिंता में अपने कक्षों में पड़े थे। उल्लास और दुश्चिंता के मिश्रण से फैली अव्यवस्था में दिव्या के किसी से कहे पूछे बिना अपने कौमार्य के गर्व की लज्जा को यथा संभव कर श्रेय पट में लपेटे शिविका पर बैठकर दासी धाता को साथ लेकर प्रेषक प्रसाद की ओर चल पड़ी। सब विपत्तियों को सहने के लिए प्रस्तुत होकर वह मन ही मन देवताओं से अनुनय कर रही थी, केवल इस समय सीरो आर्य के प्रसाद में उपस्थित न हो। शेष संपूर्ण आयु उसकी दासी बनकर चरण सेवा के लिए प्रस्तुत रहना मुझे अस्वीकार न होगा। धर्मस्थ की प्रपौनी की सीविका अनेक दिन पश्चात देखकर अंतःपुर के द्वार की प्रहरी खड़गधारी यवनी के आदर से मस्तक झुकाकर निवेदन किया, आर्य इस समय प्रमद दोधान में गणपति की पौत्री आयुष्मती सीरो की संगति में है। दिव्य सूचना के किंग कर्तव्य मूढ़ रह गई। लौटने का अवसर न था। द्वार पर वह कब तक और कैसे प्रतीक्षा कर सकती थी। उसने आदेश दिया, प्रतिहारी आर्य को समाचार से अवगत करो। उत्तर की प्रतीक्षा में दिव्या आत्मविस्मित शिविका पर बैठी रही। प्रम दोधान से दासी द्वारा आया पृथुसेन का उत्तर यवनी के निवेदन किया, आर्य क्षमा निवेदन करते हैं, वे अस्वस्थ के कारण संगति लाभ करने में असमर्थ हैं। दिव्या के कानों ने उत्तर सुना परंतु हृदय ने विश्वास न किया। वह मूक रहकर यवनी की ओर निष्पलक नेत्र लगाए रही, मानो अभी उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है। पर यवनी अपना कर्तव्य समाप्त कर चुकी थी। दिव्या को कुछ भी सूझ न पड़ रहा था। व्याप्त झंझावत में आशा के जिस दीपक को यत्न के अंचल में संभाले वह मार्ग खोजती यहाँ तक पहुंची थी, उसे पृथुसेन के उत्तर के झोंके ने सहसा बुझा दिया। वह कुछ देख न पा रही थी। अंतःपुर के द्वार पर लगी दिव्या की भावशून्य दृष्टि अनुभवी धाता आशंकित हो गई। उसने अमर्यादित व्यवहार की आशंका से शिविका वाहकों को शिविका लौटा ले चलने का आदेश दिया। शिविका पथ पर पहुँचने पर दिव्या को चेत हुआ। अपनी स्थिति के ज्ञान ने उसके दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहा दी। अभिजात वंशीय कुमारी के राजपथ पर रोदन की अमर्यादा से भयभीत होकर धात्री ने शिविका के पट गिरा दिए। पटों में ढके जाने के अपमान ने दिव्या को उद्बोधित किया। सहसा उसे याद आया, प्रायः 2 वर्ष पूर्व मधुपूर्व के उत्सव की संध्या उसका सरस्वती पुत्र का मुकुट धारण कर अभिजात वंशीय कुमारों के कंधों पर गर्व से शिविका रूढ़ होना, वह कातर होकर पट की शरण लेगी। नेत्रों से बहते आंसुओं की चिंता न कर उसने अपने हाथ से पट उठा दिए और उत्तरीय से नेत्र पोंछकर मस्तक उठा लिया। चतुर्धाता ने वाहकों को अधिक प्रकाश से पूर्ण राजपथ छोड़कर दूसरे मार्ग से धर्मस्थ के प्रसाद की ओर बढ़ने का संकेत दिया। प्रकाशित समृद्ध पन्नियों, अट्टालिकाओं और जनसमूह से आकीर्ण मार्ग छोड़कर सेविका निम्न श्रेणी से बसे प्रकाशहीन पथ से चली जा रही थी। इस पथ पर व्यवसाय सूर्यास्त के समय ही स्थगित हो जाने के मार्ग प्रायः अंधकार और पूर्ण और अंधकार पूर्ण और निर्जन था। सेविका के साथ दीप दंड न होने के कारण वाहक निश्चिंत होकर शिथिल गति से पथ के मध्य में चलने वाले नागरिकों को वक्ष वक्ष पार्श्व पार्श्व कहकर सचेत करते जा रहे थे। सहसा ललकार सुनाई दी, कौन है हमें मार्ग से हटाने वाला? अंधियारे संकीर्ण पथ के बीचों बीच अस्पष्ट सा दिखाई देने वाला एक पुरुष माथा ऊंचा किए और कंधों को अकाए मार्ग रोके खड़ा था। उसकी फैली हुई दाहिनी भुजाएं के हाथ में एक कुतुब थमा था और दूसरी हाथ की मुट्ठी से वह ललकार के भाव अपनी छाती ठोक रहा था। उसके दोनों ओर भी दो पुरुष मध्य के कुतुब हाथ में लिए डगमगा रहे थे। उसमें एक ने हास्य से ललकारा, युथुप वृकंश सुंदरी शिविका रोही वेश्या। वाहक शंकित होकर परस्पर कहने लगे, माताल माताओं का दल उपद्रव। धाता ने भी भय अनुभव किया, परंतु स्वर दृढ़ कर उसने पुकारा, अभिजात वंशीय कुमारी की शिविका के लिए मार्ग छोड़ दो माताल। माताल स्त्री के स्वर से आकर्षित होकर मार्ग से हटने की अपेक्षा शिविका की ओर बढ़े। उन्माद से डगमगाते माताल ने पुनः उन्मुक्त हास्य का चित्कार किया, स स स सुंदरी, ह ह ह सुंदरी। वृक अपनी लंबी मूछों को बाएं हाथ से मरोड़ कर बोला, यथेष्ट द्राक्षी का पान कर युथुप वृक तुम्हारी ही खोज में जा रहा था। सुंदरी, सूर वृक के द्रव्यहीन होने पर तुम अपने सुखद अंक में स्थान देना अस्वीकार किया। दिव्या के शरीर में भय की सिहरन दौड़ गई। धाता ने अपना स्वर कठोर कर पुनः प्रताड़ना की, मातालो अभिजात वंशी कुमारी के लिए मार्ग छोड़ दो। धाता की पुकार से आश्वासन पाकर दिव्या ने भी पुकारा, पथ छोड़ दो नागरिक। माताल, कौन माताल? वृक ने ऊंचे स्वर में ललकारा, युथप वृक अभिजात कुलीनों की भांति सखाओं की संगति से उत्तम सुरा का पान कर कलावती वेश्याओं से रमन करता है। धाता का स्वर भय से विकृत हो गया, माताल कुलीन नारी के सम्मुख धृष्टता का परिणाम कठिन होगा। वृक ने अपने माताल सा हाथियों सहित और आगे बढ़कर अट्ठास किया, हा हा कुलीन, सबसे बड़ा कुल है महाश्रेष्ठि प्रेष्ठ का कुल। वक्ष पर शस्त्र प्रहार सहने वाले सेनापति पृथुसेन के सैनिकों को कौन अकुलीन कहता है? नारी का कुल क्या, उसे भोगने वाले पुरुष के कुल से नारी का कुल होता है। दाव्य के कुलीन के हृदय पर पांव रखकर छीनी हुई शत स्वर्ग मुद्रा अभी सूर सुंदरियों का भोग उसके रजत पर्यंकों पर किया है। कुलीन सुंदरों, बोलो तुम्हारे सहवास का क्या मूल्य है? यदि तुम्हारे वसुमाला और मल्लिका भी हो तो भी स्वर्ण का दंड तुम्हारे द्वार पर पड़े प्रतिहारियों के खंग को नत कर देगा। तुम स्वयं उसके सम्मुख विनित प्रार्थना हो जाओगी, सुंदरी मेरे मुख से मेरे की कटु गंध नहीं, द्राक्षी की मधुर सुवास सूंघो और जो तुम्हारे प्रसाधन उपचार हो सुवसित शरीर के स्वच्छे स्वेद के समान प्रिय है।
उन्माद में डगमगाते दूसरे माताल ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर किलकारी मारी, हाय हाय कुलीन सुंदरी, और होठों से रस लेने का शब्द कर भूमि पर पांव पटकने लगा, आओ सुंदरी सुख दो और ढल लो। ब्रिक ने भुजा फैलाकर निमंत्रण दिया। धाता ने भयकंपित स्वर में पुनः पुकारा, धृष्ट माता, कुलीन वंश की कन्या के अपमान का फल अत्यंत कठोर होगा। ब्रिक के दाहिनी ओर खड़े शिथिल पद माताल ने आगे बढ़कर तहास से चीत्कार किया, कुलीन नारी, और दूसरे माताल साथी की भांति शब्दों का रस जिह्वा से होठों पर अनुभव कर उन्माद से विलंबित स्वर में उसने दोहराया, युथप कुलीन नारी का लो लगा, और हाथ में मध्य कुतुब पुनः मुख से लगा लिया। दिव्या का धैर्य शिथिल हो गया, मन का आतंक वश कर उसने अपने स्वर में कठोर कर प्रताड़ना की, सैनिकों इस दृष्टा का फल दारुण होगा। मर्मत्त वृक्ष शिविका की ओर बढ़ाया, हिंसक पशु की भांति गुर्रा कर हाथ का कुतुब पथ पर पटक कर उसने उत्तर दिया, नारी का यह अहंकार क्या मूल्य है तेरे अभिमान का? तुझे अहंकार है कुलीन पुरुष के भोग्य होने क्या? युद्धपति वृक्ष ने दारुण में कुलीन का सिर अपने पद से कुचला है, उसने अपना भारी यवन जूटा शिलामंडित पथ पर पटका, तुझे रजत के पर्यंग और कौशेय के विस्तरों पर कुलीन धनी पुरुषों द्वारा भोगी जाने का गर्व है? तेरी भांति अनेक स्वीकारों ही अभिमानी कामनियों का वर्णन विक ने अपने अंगों से किया है। दांत किटकिटा कर कमर से बोझिल बसी खींच कर अधर में दिखाकर विक ऊंचे स्वर में पुकारा, मैं तेरे अहंकार का मूल्य दे सकता हूँ। विक ने भुजा घुमाकर अपने साथी को आज्ञा दी, वारन स्वीकारो ही कुलीन सुंदरी को यूट पपति वृक की सेवा में उपस्थित करो। सिविका पर बैठी दिव्या थर थर कांप रही थी, ढाटा दोनों हाथ उठाकर सिविका के सम्मुख खड़ी होकर चित्कार कर उठी, आताताई नागरिकों रक्षा करो। वाहकों को उसने कुमारी की रक्षा के लिए ललकारा। वाहक उतावली में सिविका पथ पर टिका कर आगे बढ़े, सहसा समीप ही शिला मंदिर पथ पर द्रुत वेग से दौड़े आते अश्वों की ताप सुनाई दी। सम्मुख पथ के मोड़ पर शीघ्रता से बढ़ते प्रकाश की झलक दिखाई दी। क्षण भर पश्चात ही एक दीप्त दंधारी अश्वारोही सशस्त्र दास सहित आता दिखाई दिया। ढाटा पुकार उठी, आर्य रक्षा, आताताई से धर्मष्ट की प्रपोत्री की रक्षा। कुलीन युवक के अश्व की वागुड़ा खींच गई, दूसरे अश्व भी सहसा रुक गए, तीनों माताल अस्तंभित रह गए। गति से लटकी खड़ग खींचकर अपने अश्व को सिविका के सम्मुख कर युवक ने कहा, महाश्रामन सर्वार्थ वर्मा का पुत्र अजय वर्मा कुमारी की सेवा में प्रस्तुत है। इस असमय इस अशोभन स्थान में भद्रे का आगमन किस प्रकार हुआ? आदर से मस्तक झुटकाकर ढाटा ने उत्तर दिया, आर्य कुमारी एक सखी के निमंत्रण से लौट रही है, राजपथ के जमघट में विलंब से बचने के लिए सिविका निराले पथ से जा रही थी। माताल अताताइयों ने मार्ग अवरोध कर दिया। अजय मरवा ने क्रोध से मातालों की ओर देखा, वृक के दोनों साथी भय से कांप रहे थे। वृक भाग जाने की चेष्टा में अश्वारोही सशस्त्र दास द्वारा रोक लिया गया। वृक का सैनिक वेश देखकर अजय वर्मा क्रोध से ऊंट काट कर बोला, विजयी बलाधिकृत दास पृथुसेन के सैनिकों के अतिरिक्त यह दुस्साहस कौन करेगा? तीनों मातालों को बंदी बनाकर राजपुरुषों का सौंपने का आदेश सशस्त्र दास को देकर अजय वर्मा ने दीप्त दंधारी दास को महापंडित धर्मष्ट के प्रसाद का मार्ग दिखाने का आदेश दिया। वह स्वयं सिविका के पार्श्व में चला। दिव्या के प्रति सहानुभूति में वह अपना असंतोष प्रकट कर रहा था और कुलीनों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें कुलीनों का पद देने का परिणाम अभी और क्या होगा? संभवतः हमें अपने प्रसादों से निकाले जाकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर पन्नियों में अपना अस्तित्व भी खो देना होगा। सिविका के कुछ पद आगे बढ़ने पर दिव्या ने निवेदन किया, आर्य की अत्यंत सामयिक कृपा के लिए अनेक धन्यवाद। आर्य कष्ट न करें, देवी वसुमित्रा को दिए वचन के अनुसार कुछ क्षणों के लिए मुझे उनके चतुस्साल में उपस्थित होना आवश्यक है। इस कारण भी इस मार्ग का अवलंबन किया था। देवी वसुमित्रा के प्रसाद से दीपनंद का प्रबंध सुविधा से हो सकेगा और मार्ग भी प्रशस्त है। ढाटा ने विस्मय से दिव्या को देखा परंतु उसकी बात में योग दिया, देवी वसुमित्रा के प्रसाद में कुमारी की प्रतीक्षा है, आर्य को दासी का प्रणाम। अजय वर्मा के आदेश से दीपनंदधारी दासी ने मार्ग बदल लिया और सुमित्रा के प्रसाद के अनेक दीपों से प्रकाशित सिंह द्वार के तोरण के नीचे पहुंचकर आर्य अजय वर्मा कुमारी का नमस्कार आदर से ग्रहण कर अपने मार्ग पर विदा हो गया। दिव्या ने वसुमित्रा के सिंह द्वार पर सिविका छोड़कर उद्यान में प्रवेश किया। ढाटा स्वामिनी का अभिप्राय न समझकर मुख तत्परता से पीछे पीछे चली। द्वार से चतुस्साल की ओर न जाकर दिव्या अंधकार में उद्यान में घने कुंज में जाकर पृथ्वी पर बैठ गई। ढाटा को सम्मुख ने कुछ उद्बोधन किया, अम्मा तुम जाओ, सिविका सहित प्रसाद लौटाओ, मेरे लिए प्रसाद में स्थान नहीं, आर्य पृथुसेन के यहाँ भी नहीं, मैं वंचिता हूँ, किं कर्तव्यमूढ़ हूँ, नहीं जानती कहाँ स्थान पाऊंगी, पथ पर वीथियों में वन के वृक्षों के नीचे अथवा आपका के जल में। अम्मा तुम जाओ, तुमने संतान की भांति अपने स्तन से मेरा पालन किया, माता पुत्री को पति के घर के लिए विदा देती है, वैसे ही मुझे विदा दो, मेरे पति की मेरी वंचना की है, अब प्रपितामह और किसी के यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं, वह नहीं कह नहीं सकती कहाँ जाऊंगी। ढाटा के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। अपना स्तन मुख में देकर हृदय पर रखकर पाली हुई दिव्या स्वामिनी होकर भी उस असहाय अवस्था में उसकी अपनी बेटी के ही समान हृदय का अंग हो उठी। समीप ही भूमि पर बैठकर दिव्या को अंक में लेकर ढाटा ने अश्रु अवरुद्ध कंठ से कहा, बच्चे क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ जाऊं, तुम कहाँ जाओ? दिव्या के नेत्र सूखे रहे, स्वर भी संयत रहा, अम्मा विवाह बिना गर्भ धारण कर मैं टाट के प्रसाद में किस प्रकार रह सकती हूँ? जिसका गर्भ है उसी के यहाँ स्थान नहीं तो कहाँ स्थान होगा? जहाँ मेरा गर्भ है वही मैं हूँ, कहीं भी स्थान न पाने पर दासी कर्म कर अपने आप को बिक्री कर उदर के प्राणी की रक्षा करूंगी, देव की जो इच्छा हो। क्या कहती हो बच्चे? अपने आंसुओं से दिव्या के केस भिगोकर उसे बलपूर्वक आलिंगन में समेट कर ढाटा ने कहा, तुम पथवीटी में जीवन बिताओगे, तुम दास्य करोगे, मेरी मानिक जिसके हाथ से कभी काष्ट स्पर्श नहीं किया, चंद से रज का स्पर्श नहीं किया, धाम नहीं देखा, सीत नहीं देखा, मेरा मानिक तुम वीठी में निर्जनवन में किस प्रकार बिताओगी? टाट आताताई और निष्ठुर हिंसों से पूर्ण इस समाज में तुम अकेली। अम्मा उपाय क्या है? दिव्या ने पूछा, किससे भय? भय किससे नहीं है, माताल वृक्ष से भय है, पृथुसेन से भय नहीं किया था, क्या हुआ? वृक्ष से भय किस कारण? नारी है क्या? माताल वृक्ष ठीक ही कहता है अम्मा, कठोर धीर रुद्र धीर कोमल पृथुसेन अभद्र मारीस और माताल वृक्ष नारी के लिए सब समान है, जो भोग्या बनने के लिए ही उत्पन्न हुई, उसके लिए अन्यत्र शरण कहा, उसे सब भोगेंगे ही, भय किससे नहीं? क्या तात से भय नहीं, महापितृव्य से भय नहीं? वे मुझे आर्य रुद्रधीर को देना चाहते थे, मैंने स्वेच्छा से पृथुसेन को आत्मसमर्पण किया, उसका फल यह है। अम्मा क्या उपाय है? धाता कुछ उत्तर न देकर दिव्या को अपने उमड़ते हृदय से लगाए मौन रोती रही। कंठ के आंसू निकलकर क्रंदन से विकृत स्वर में उसने कहा, बच्चे स्वामिनी, हिंसों से पूर्ण संसार में मैं तुम्हें अकेली कैसी जाने दूं? मेरी मानिक दासी तेरे साथ रहेगी। कोमलांगी कन्या के लिए प्रसव कठिन समय होता है। बच्चे, दास की गति स्वामी के साथ है, मैं तेरी ही दासी हूँ। विपत्ति में तुझे छोड़कर परलोक के लिए किस प्रकार पातक संचय करूं? मैंने जीवन और समाज देखा है, सुख दुख देखा है, स्त्री पुरुष देखे, छल छंद देखा है। मेरी अमोर स्वामिनी, तेरी माता ने तुझे मुझे सौंपा था। तेरे कष्ट में तेरी दासी यमुना तुझे अचल की ओर में लिए तेरे साथ रहेगी। दिव्या और अम्मा वसुमित्रा के उद्यान के अंधकार में दो घड़ी मौन बैठी रही। चतुस्साल में समाज विसर्जन के होने के समय दिव्या और धात्री सिंह द्वार पर प्रतीक्षा करते शिविका वाहकों को छोड़कर उद्यान के पृष्ठ द्वार से निकल पुनः नगर की अंधियारी वीथियों में फिरने लगी। शरीर के भार के कारण दिव्या के लिए निरंतर चलते जाना दूभर था। उसने नगर की किसी पंथशाला में आकर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। धाता ने समझाया, बच्चे, पुरुष साथ न होने से पंथशाला आपत्तिजनक है, वहां राजपुरुषों की शंका का उत्तर देना हो। सेविका वाहकों के रिक्त सेविका लेकर प्रसाद लौटने पर तुरंत खोज होगी। रात्रि का दूसरा प्रहर समाप्त हो रहा है, सब ओर अंधकार है। केवल पथ के समीपवर्ती घरों के ग्वाक्षों और आलिंदों से ही जहां तहां प्रकाश पड़ रहा था। प्रकाश था तो मध्य के पंजों और वेश्याओं के घरों के सम्मुख। दिव्या और धाता को प्रकाश में पहचाने जाने का भय था, अंधकार में भी अज्ञात का भय था, पुरुष का भय था। इस समय पथों पर केवल पुरुष ही थे, स्त्रियां न थी। स्त्रियां थी तो केवल वेश्याएं, पुरुष भी ऐसे जिनसे स्त्रियां आशंकित होती। वीथी या पथ के किसी स्थान पर बैठना या खड़े होना संदेह का कारण था। धाता और दिव्या शिथिल पदों से इस वीथी से उस वीथी और उस पथ से इस पथ पर घूम रही थी। भयंकर शीत में भी अत्यंत शांति के कारण दिव्या के वस्त्रों के नीचे स्वेद की धारा बह रही थी। कभी वायु सम्मुख होने पर वो थिथर कर कांपने लगती। वे आश्रय खोज रही थी, परंतु जानती न थी आश्रय कहाँ है और वह कैसा होगा। लक्ष्यहीन चलते चलते दिव्या और धात्री दूसरी बार वेश्याओं के मार्ग पर निकली। वह मध्य और खाद्य के पन्नों पर अब भी पर्याप्त प्रकाश और कोलाहल था। भवनों के दूसरे खंड पर वेश्याओं के आलिंदों में जलते दीपों का प्रकाश मार्ग पर पड़ रहा था। उन दीपों के समीप प्रकाश मुख पर लिए पुष्पों से केश गूंथे, मुख और होंठ रंगे अनेक वेश्याएं बैठी थी। वे मार्ग पर आने जाने वाले पुरुषों का ध्यान संकेत से आकर्षित कर रहे थे। अनेक आलिंदों से वीणा, वंशी और मुरंज के स्वर सुनाई दे रहे थे। मार्ग पर भी वेश्याएं गले में पुष्पहार पहने और ओठों पर तांबूल और नेत्रों में मद की लाली और मुख पर उद्दीपन और उन्माद का भाव लिए पुरुषों को आमंत्रित कर रही थी। अनेक अपने ग्राहकों के बाहों का आश्रय लिए मार्ग पर घूम रही थी। धाता ने दिव्या के कान के सम्मुख मुख ले जाकर कहा, वेश्याओं का स्थान है, यहाँ से शीघ्र चली चलो। संकोच अथवा आशंका प्रकट न कर दिव्या ने उत्तर दिया, अम्मा, अधिक चला नहीं जाता, कहीं विश्राम करें। एक अपानक के समीप से जाते समय पौन में रत किसी पुरुष ने उन्हें परिहास के संकेत से पुकारा। अपनी पुकार की उपेक्षा से उस पुरुष ने आगे बढ़कर धाता के कंधे पर हाथ रखकर प्रश्न किया, मौसी, इतने उत्सुक रसिकों की अवज्ञा कर इस सुंदरी को किस भगवान के प्रयोजन के लिए ले जा रही हो? कुछ घड़ी पूर्व शिविकारूढ़ रहने और रक्षार्थ शिविका वाहकों की उपस्थित होने पर भी दिव्या ने माता लुड़क की ललकार से आशंका अनुभव की थी। इस समय पथ पर निराश्रय होकर उसने धाता से पूर्व ही निशंक स्वर में उत्तर दिया, नागरिक, हम वेश्या नहीं है, हम विदेशी है, पांचशाला का मार्ग भूल गई। इस मद्यप के पीछे और भी पुरुष मद्य के पन्ने से उठाए। उसी समय समीप की वीथिका से निकलकर एक वृद्धा ने धाता, दिव्या और मद्यपों के बीच होकर दोनों बाहों फैलाकर विरोध में कहा, वाह, कैसे भद्र हो तुम सागल के नागरिक हो, तुम कुल वधुओं और वेश्याओं में अंतर नहीं जानते। मद्यप ने परिचय के स्वर में वृद्धा को संबोधन किया, वाह मौसी जया, तुम बीच में क्यों बोलती हो? अरे मैं बीच में बोल रही हूँ, क्या कहते हो युवक? इसमें से आहत होने के भाव से दोनों हाथों की हथेलियां दिखाकर वृद्धा ने कहा, मैं बीच में बोल रही हूँ, मेरी बहन की बेटियां वलका से आई है, उन्हें स्थान पर पहुंचाने जा रही हूँ। देखो तो इन्हें पांव चलने का अभ्यास नहीं, कैसी क्लांत और विसरी हो रही है। वृद्धा धाता की पीठ और दिव्या के सिर पर स्नेह का हाथ फेरने लगी। युवकों को संबोधन कर उसने कहा, तुम्हें वेश्याओं के यहाँ जाने का प्रयोजन है तो जाओ ना, वाशा के यहाँ जाओ, उसके यहाँ दो नवीन पर्वतीय आई है, मध्य के प्रभाव से नेत्र क्यों मूंद रहे हो? चलो बेटी चलो, वृद्धा ने धाता और दिव्या को आगे बढ़ने का संकेत किया। कुछ पथ आगे पथ के अंधकार पूर्ण भाग में पहुंचकर वृद्धा चिंतापूर्ण वात्सल्य के स्वर में बोली, हाय हाय, देखो तो कैसे दुष्ट पुरुष है, यदि मैं देख न लेती चलते चलते बेटियों के पांव शिथिल हो गए। पथ भूल गई तो क्या, पांचशाला बहुत दूर है तो क्या, सूर्योदय होने पर पांचशाला पहुंचा आऊंगी। धाता ने दिव्या का बाहू छूकर संकेत किया, दिव्या ने उसके मुख की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि उठाई, परंतु अंधकार के कारण कुछ जान न पाई। वृद्धा कहती जा रही थी, देवताओं का दिया तुम्हारा अपना घर है, सेठी की भांति अट्टालिका न सही, परंतु विश्राम के योग्य स्थान, भोजन सब कुछ है, मेरी भी तुम्हारे जैसी बेटी है। धाता के पांव में दासी के चिन्ह स्वरूप लोहे का कड़ा पहचान कर वृद्धा ने उसे संबोधन किया, आहा, तुम स्वामिनी की कितनी अनुगत हो, तुम निश्चय ही पुण्यात्मा हो। दाता ने उत्तर दिया, मौसी, तुम अत्यंत कृपालु हो, परंतु हम लोगों का पांचशाला पहुंचना आवश्यक है, परिजन प्रतीक्षा से उद्विग्न होंगे, दिव्या बोल उठी, परंतु अम्मा मैं अत्यंत शांत हूँ, चलना कठिन है। दाता ने पुनः उसकी बाह दबाकर संकेत किया। अभिप्राय न समझकर दिव्या पुनः उसके मुख की ओर देखने लगी। परिस्थिति भांप कर वृद्धा दिव्या के सिर पर हाथ रखकर कर्ण स्वर में बोली, हाय हाय, ठीक तो कहती है बेटी, इसकी अवस्था क्या चलने योग्य है? यदि ऐसा ही है तो घर में घड़ी आधी घड़ी भोजन विश्राम करो, न होगा बिटिया को पालकी से पौधशाला पहुंचा दूंगी। हाँ, अभी विलंब ही क्या हुआ है और ऐसा दूर भी क्या है। धाता विवश मौन रह गई। वृद्धा कहती गई, और क्या, इसी संकट वेला में कुलवधु के अज्ञात पुरुषों से भरे पट पर जाती है। बेटी, युवती को पुरुष से सरा आशंका है, इस वृद्धावस्था में भी निर्जन पट पर पुरुष को देखकर मेरे रोम कांप जाते हैं। यह सागल नगरी युवतियों के लिए विहर वन से अधिक भयानक है। यहाँ के छलिया पुरुष नारी मांस के विकट आंखें तक है। मैं तो जरा जीर्ण हो गई, अब अंधकार में पट भी नहीं देख पाती। धाता और दिव्या को लिए वृद्धा ने एक अंधियारी वीथी पार कर एक जीर्ण साधारण भवन के सामने ठहर कर द्वार खटखटाया। कुछ क्षणों में द्वार खुला, एक प्रौढ़ व्यक्ति दिखाई दिया। दिव्या और धाता से वृद्धा के प्रवेश कर लेने से दिव्या और धाता दोनों की ही पीठ पर भय की सिहरन दौड़ गई। ड्योढ़ी के सम्मुख आंगन और आंगन के आगे आलिंद और कोठे थे। कोठों के द्वार मुंडे थे। आलिंद के एक कोने में दीपक जल रहा था, दूसरे कोने में छोटे पर्यंक पर श्वेत बिस्तर बिछा था। पर्यंक के समीप भूमि पर एक दास बालक सीट से सिमटा बैठा था। आंगन में पहुंचकर दीर्घ श्वास के साथ दिव्या के मन में प्रश्न उठा, विश्राम के लिए आश्रय पाया या बंधन। उसने धाता के नेत्रों की ओर देखा, वहां भी उसे भय और आशंका दिखाई दी। प्रौढ़ गृह स्वामी की जिज्ञासु दृष्टि के उत्तर में वृद्धा ने कहा, देखो तो मेरे अपने पेट की बेटी जैसी अभद्र युवती दासी सहित मार्ग भूर कर क्लेशित हो रही थी। मेरा देखकर मेरा हृदय उछल आया, माताल पुरुष भी कैसे होते। अस्तु तुम इन्हें विश्राम के लिए आसन और क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ जलपान दो ना। प्रौढ़ पुरुष ने स्थिति जानकर हामी भरी और पर्यंक के बिस्तर पर बैठकर हाथों से तालियां बजाई। समीप बैठा दास बालक का ध्यान आकर्षित होने पर प्रौढ़ ने भूमि पर बिछाने के संकेत से आसन और मुक्की ओर हाथ कर खाद्य पदार्थ के लिए आदेश दिया। वृद्धा प्रौढ़ा के सम्मुख भूमि पर अति निकट बैठकर रहस्य के स्वर में उससे कुछ परामर्श करने लगी। कुछ क्षण पश्चात बालक कंख में चटाई और हाथ में काष्ठ का एक पात्र लिए लौटा। धाता ने बालक के हाथ से चटाई लेकर भूमि पर बिछा दी। दिव्या के बैठ जाने पर वह स्वयं समीप भूमि पर बैठ गई। दिव्या ने उसे हाथ से समीप चटाई खींचकर अपने शरीर से चिमटा लिया। बालक ने भुने अन्न से भरा काष्ठ का पात्र उसके सम्मुख रख दिया। पात्र हाथ हाथ से हटाकर धाता ने बालक से जल मांगा। ध्यान वृद्धा की बात की ओर होने पर प्रौढ़ा ने धाता की बात सुन पुनः बालक का ध्यान आकर्षित कर उंगलियों से संकेत किया। बालक फिर आंगन के भीतरी द्वार से चला गया और क्षण पश्चात एक युवती के पीछे पीछे लौटा। युवती सुंदरी थी, आयु में प्रायः दिव्या की समवयस्क का, वर्ण गोरा, कृष्ण दीर्घ नेत्रों और मुख पर चपलता और अधिकार का भाव। उसके कंठ और बाहू पर दो स्वर्ण के आभूषण थे। सीट से बचने के लिए अर्घ ओढ़े थी। धाता और दिव्या की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि डालकर उसने प्रौढ़ की ओर देखा। युवती की जिज्ञासा के उत्तर में कुछ शब्द दुर्बोध भाषा में बोलकर प्रौढ़ ने शेष बात सुलभ भाषा में कही, अंजना यह कुलवधु दासी सहित हमारी अतिथि है, इसकी जलपान के लिए कुछ लाओ। युवती अनुमति में ग्रीवा झुकाकर पुनः आगंतुकों की ओर देखती हुई चली गई। शीघ्र ही वह बालक के हाथ में एक कांसे के पात्र में रखा हुआ भुना हुआ मांस और दूसरे हाथ में सुरा का कुट्टूप और पान पात्र लिए उपस्थित हुई। युवती दोनों वस्तुएं दिव्या के सम्मुख रखकर बोले, भद्रे, इस समय केवल यही शेष है, किंचित आहार और पान से शांति दूर होगी। दिव्या के आहार के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर धाता ने युवती से जल के लिए अनुरोध किया। युवती के संकेत से बालक पीतल के एक पात्र में जल ले आया। अभ्यास न होने के कारण दिव्या ने भारी पात्र को तनिक असुविधा से थाम कर यथेष्ट जल पिया और सीट से कांप गई। दिव्या को कुछ आहार न लेते देखकर वृद्धा ने आत्मीयता से आग्रह किया, बेटी कुछ खाओ ना, यह मांस अत्यंत कोमल और स्वादु है, आसव अत्यंत उत्तम है, इसके सेवन से मन स्वस्थ होगा। बेटी संकोच न करो, तुम्हारा अपना ही घर है। वृद्धा कुछ समय तक दुर्बोध भाषा में प्रौढ़ से बात कर रही थी। उसका स्वर व्यग्रता के कारण ऊंचा हो रहा था। पर्यंक की पाती का आश्रय लेकर वह असंतोष के भाव से उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाती हुई द्वार की ओर चल दी। प्रौढ़ भी उठा, वह वृद्धा को सांत्वना दे रहा था। कति पर अंतर्वाहक की लपेट में से निकलकर उसने एक स्वर्ण मुद्रा वृद्धा के हाथ में दी। वृद्धा ने असंतोष से हाथ झटक किया। कुटी हुई भूमि पर मुद्रा के गिरने की झंकार हुई। गिरी हुई मुद्रा उठाकर पुनः वृद्धा के हाथ में थमाकर प्रौढ़ दुर्बोध भाषा में सांत्वना देता हुआ वृद्धा के द्वार की ओर से चला। वृद्धा के लिए उसने द्वार का ताला खोलकर मार दिया और पुनः ताला लगाकर चाबी को कति पर अपने अंतर्वासक की लपेट में खोसकर आंगन के द्वार से दूसरी ओर चला गया। सीट से सिमटा हुआ दास बालक अलिंद के स्तंभ से पीठ लगाए अपने दोनों दुर्बल काले जानुओं को बाहुओं में लपेटे उन पर थोड़ी टिकाए निरंतर उन दोनों की ओर देख रहा था। दृष्टि दूसरी ओर होने पर भी दिव्या को निरंतर ताला लगा हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। वह बंधन और व्यवस्था अनुभव कर रही थी। धाता ने उसके कान के सम्मुख मुख ले जाकर अत्यंत धीमे स्वर में कहा, भद्रे, सद्गृहस्थ का निवास नहीं जान पड़ता, जो भी हो। दीर्घ निश्वास से दिव्या ने उत्तर दिया, उपाय क्या है। अपना सिर उसने धाता के कंधे से लगा दिया। आंगन की कुटी हुई भूमि गोबर से लिपी थी और भित्तियां नीलापन लिए श्वेत मिट्टी से। आलिंद ने दीपाधार पर जलते दीप से आंगन की भूमि पर धीमा प्रकाश पड़ रहा था। भित्तियां आधी ऊंचाई तक प्रकाशित थी। ऊपर का भाग अंधकार में विलीन हो जाने से अंधकार में आकाश में जा मिला था। नेत्र प्रकाश में रहने के कारण खुले आकाश का अंधकार और भी निविड़ जान पड़ता था। शीत से जमे वाष्प से भरे आकाश में तारे गहरे कुएं की तलहटी में हिलते जल की भांति झिलमिला रहे थे। दिव्या और ढाता चिरकाल तक मौन बैठी अपने आप को अंधकूप में बंदी की भांति निस्सह और परवस अनुभव करने लगी। मन की क्षुब्ध स्थिति से दिव्या और ढाता को आकाश के चिरपरिचित नक्षत्र भी अपरिचित और विचित्र जान पड़ रहे थे। दिव्या कुछ पल आकाश की ओर देखती और फिर जानू पर चिमुक टिकाकर सोचने लगती, कहाँ आ गई, आगे क्या होगा। पितामह के प्रसाद में सब कुछ था, परंतु वहां पर अपराधनी और कलंकनी बन गई। यदि वह अपराधनी और कलंकनी न बने तो वह भृत्यादासी सभी कुछ बनने और सहने के लिए प्रस्तुत है। वह माता बन रही है, माता बन सके। दिव्या को कल्पना में टाट का प्रसाद दिखाई देने लिया। धृति शर्मा की पत्नी आर्य मोक्ष के प्रथम गर्भ प्रसव के उपलब्ध में संपूर्ण प्रसाद उल्लास से गुंज उठा और वह स्वयं उसी अपराध के कारण निराश्रय होकर गर्भरक्षा के लिए भाग रही है। उसने एक दीर्घ निश्वास लिया। हाय वंचक पृथुसेन, सुख और गर्व का कारण गर्व कलंक और अमार्दनीय अपराध बन गया। कल्पना में रुक्ष और गंभीर रुद्रधीर भी दिखाई दिया और अभद्र चारवाक मारिस भी। मारिस की वह स्तुति स्मरण हो गई। भद्रे, तुम्हारी कला तुम्हारी आकर्षक शक्ति का निखार मात्र है जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। दिव्या का मन कटुता से भर आया। नारी की उस आकर्षण में, नारी की निहित सृष्टि की शक्ति में उसके लिए कितना अभिशाप अंतर्निहित है। इन सब के लिए वह कब प्रस्तुत थी, परंतु देव की इच्छा ऐसी ही थी। प्रौढ़ आंगन के भीतरी द्वार से लौटा। युवती उसके पीछे थी। बेटी, यहाँ सीट में कष्ट होगा, प्रौढ़ ने दिव्या को संबोधन किया तथा हाथ बढ़ाकर कहा, लाओ यह तुम्हारे आभूषण सुरक्षित रख। दिव्या के नेत्र प्रौढ़ की ओर उठे, ढाता के भी उस ओर उठे। मुख से कुछ न कहकर कंठ की मुक्ता मालाएं उठाकर प्रौढ़ के हाथ में दे दी। प्रौढ़ के साथ खड़ी युवती अपना कौतूहल वश में न कर सकी। उसने मालाएं प्रौढ़ के हाथ से झपट कर ली और विस्मय से नेत्र फैलाकर उन्हें दीपक के समीप ले जाकर देखने लगी। प्रौढ़ ने उस ओर ध्यान न देकर दिव्या के बाहुमूल की ओर संकेत कर कहा, बेटी यह अंगद भी। दिव्या ने अपना बाहु ढाता की ओर बढ़ा दिया। ढाता ने विवशता से कांपती उंगलियों से रत्नरित अंगद के बंधन खोलकर अंगद भी प्रौढ़ के लिए फैले हाथ पर रख दिया। युवती ने वह भी झपट लिया। प्रौढ़ ने अपनी बात दोहराई, बेटी यह आकाश के तले भूमि पर कष्ट होगा, आओ कक्ष में विश्राम करो। दिव्या और ढाता प्रौढ़ के संकेत से उठकर पीछे पीछे आंगन के द्वार से चल दी। दिव्या और ढाता एक विस्तृत आंगन में पहुंची। आंगन के चारों ओर अनेक कक्षों के मुंडे हुए कपाट भित्तियों में दिखाई दे रहे थे। दक्षिण के कोने की ओर से एक प्रकाशित कक्ष के अतिरिक्त सब ओर गहरा अंधकार था। प्रौढ़ इसी दिशा में ढाता और दिव्या के आगे आगे चला। कक्ष का द्वार खुला। प्रकाशित कक्ष के समीप द्वार के बाहर एक व्यक्ति प्रहरी के मलिन वेश में, कमर में खड़ग और बाएं हाथ में कोड़ा लिया खड़ा था। तीन पुरुष कक्ष से निकले, जीर्ण मलिन और अपर्याप्त वर्षों में सीत से सिमटते हुए दास से जान पड़ते। प्रहरी उन तीनों को दूसरी ओर ले गया। मूक बालक कंख में चटाई ली और हाथों में दीपक संभाले स्नेह स्नेह उसके पीछे चला। प्रौढ़ के संकेत से बालक ने दीपक कक्ष के कोने में रख चटाई पर भूमि बिछा दी। वृद्धा ने दिव्या की पीठ पर हाथ रखकर उसे भीतर जाने का संकेत किया। बेटी यहाँ सीट में कष्ट न होगा, सीट से कष्ट न होगा, विश्राम करो। ढाता भी कक्ष में जा रही थी, परंतु प्रौढ़ ने अपने बाहू से द्वार रोक कर कहा, तुम्हारे लिए अन्यत्र स्थान है। दिव्या ने बिलख कर प्रार्थना की, अम्मा को यहीं आने दो, परंतु कक्ष के द्वार बंद हो गए। दिव्या ने बाहर द्वार पर ताला लगा देने का शब्द सुना। कक्ष में दिव्या और बाहर ढाता के कंठों में चित्कार उठा, परंतु स्वयं ही उनकी व्यस्तता अनुभव हो जाने पर वह निःशब्द श्वास में बह गया। उसे कौन सुनता, दोनों के नेत्रों में व्यस्तता के अश्रु बहते रहे। समाप्त।